أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ لوگ سب اپنی بریک سے واپس آ گئے ہیں الحمد للہ. اور ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت لیسن ہمارا چل رہا ہے سورۃ النور کا. اور یہ بتایا کہ آج کے لیسن سے کیا کیا سیکھا ہے ہم نے. جی آج کے لیسن سے کیا کیا سیکھا ہے اپنی پرسنل ٹریننگ کے لیے ہم نے کیا پوائنٹس لیے ہیں آپ لوگ سب شیئر کریں. Do not get involved in slander. اور اس سب سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ ہم بیکار باتوں سے بچ جائیں نا, یعنی کہ کوئی ہم بدگمانی کی بات نہ کر دیں, کسی کی غیبت نہ کریں, کوئی الزام نہ کریں. اس سب سے بچنے کے لیے ایک بیسک اسٹیپ کیا اٹھانا پڑتا ہے. ویری گڈ سسٹر میرک, اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ. زبان کی حفاظت کریں نا, اور نیور ہیو بیڈ اسمپشنز اباؤٹ اے مومن اسپیشلی. جی بالکل. اور نجات پا گیا وہ جو چپ رہا, بالکل صحیح بات ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر کافی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز ہمارے اراؤنڈ جو ایٹماسفیئر ہے وہ باتونی ایٹماسفیئر ہے, آئی وڈ سے, کہ جس میں بات کرنے کو بہت زیادہ انکریج کیا جاتا ہے. جو بات نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں یہ مغرور ہے یا یہ بات نہیں کرنا چاہتا, اس کو عجیب عجیب بات کہتے ہیں. لیکن اس میں بھی ہمیں پھر اپنے آپ کو سیف کرنا بہت ضروری ہے نا, کیونکہ نجات پا گیا ہے وہی جو چپ رہ جائے گا. اور اسی سے پھر حکمت بھی آتی ہے, خاموشی, اسٹے اوے فرام گاسپس. اور نجا من سمد, سمت سمت ہے میرے خیال سے, من سمت میرے خیال سے سین مین تھا. مائنڈ یور اون بزنس, میک یور سیلف بزی اینڈ ریئلائز یور ایوری ورڈ از بینگ ریکارڈڈ. خاموشی بھی عبادت ہے, اور خاموشی ہزار نعمت ہے. خاموش رہنا بالکل ایک بہت ساری نعمتوں کو لے کر آتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسپیشلی اس نیت سے خاموش رہتے ہیں کہ اچھا میں اپنی خامخواہ الفاظ کیوں ضائع کروں اور میں خاموش رہتی ہوں, یہ چیز خود ہی کلیئر ہو جائے گی. تو آپ نے فیل کیا کہ وہ بات خود بخود ہمارے سامنے آ جاتی ہے. خاموش رہیں, اب ہم نے کہا بھی نہیں, پوچھا بھی نہیں, مگر وہ خود بخود ہمارے سامنے کھل جائے گی. ہوتا ہے نا ایسا. جی ایک چپ سو سکھ, بالکل, لیونگ دیٹ وچ ڈزنٹ کنسرن یو, بالکل صحیح بات ہے. اور خاموشی میں پھر زیادہ انسان کو فائدہ ملتا ہے. میک یور سیلف بزی اینڈ ریئلائز یور ایوری ورڈ از بینگ ریکارڈڈ, بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز بھی سیکھی کہ ہمیں کس کے بارے میں, یعنی عام طور پر بدگمانی کیسے اسٹاپ کریں گے ہم, یعنی اگر کسی کے بارے میں کوئی بری سوچ آتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے سچویشن بھی ایسی آ رہی ہو کہ جس سے لگے کہ اگلا شخص گناہ ہی کر رہا ہے یا اس نے واقعی غلط کام پر, I'm not sure, صرف لگ رہا ہے ایسا, تو پھر کیا اس کے لیے کیا کر سکتے ہم. کہ جیسے استاذہ نے ہمیں بتایا نا کہ ہمارا اس سے کام نہیں ہے, یعنی کہ اگر تو ہمیں کوئی حقیقت والی بات پتا ہے کہ واقعی کوئی گناہ کر رہا ہے اور اس سے ہمیں روکنا چاہیے تو ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر صرف assumption ہے, guess ہے اور guaranteed بات نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہیے. excessive talking hardens the heart and the ones farthest from Allah are those whose hearts are hard. بالکل. don't spread it to other retowers, بالکل صحیح ہے کہ یہ وسوسے ہیں شیطان کی طرف سے. اور انتظار کریں کہ سچ سامنے آ جائے اور خاموشی اس میں بھی اختیار کریں. بالکل. doesn't concern you, then better to leave it alone. بالکل صحیح بات. اور یہ ہماری, جیسے اگر ہم کہیں تو sometimes میں یہ سوچتی ہوں کہ ہماری اپنی جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے اس میں یہ والی برائیاں کتنی زیادہ کامن ہے نا, اور شیطان ہمیں بھی اس میں کھینچنا چاہتا ہے اور بزی کرنا چاہتا ہے. اور جب تک قرآن کا صحیح علم نہیں تھا تو ہم بھی بہت سارے اس میں ہو سکتا ہے بزی ہوتے ہوں, ہے نا. اور کس طرح سے پھر میں سوچتی ہوں اب کہ اگر ہمارے اپنے ہی خاندان کے معاملات اتنے الجھے ہوئے ہیں اور ہم اتنے بزی ہیں انہیں کو سالو کرنے میں, تو ہم باقی بڑے مشن کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. پھر ہم وہ بڑا کام, بڑی ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے ایک امت ہونے کے ناطے, وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے سیو کریں, اینڈ سیو آور سیلوز فرام یوز لیس اسپیچ. پھر دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو کیسے تربیت کر سکتے ہیں, اس بارے میں یہ بتائیں کہ کیسے ہم ان کو یہ سکھا سکتے ہیں, بیکاز وہ بھی اسی معاشرے میں چونکہ بڑے ہو رہے ہیں نا, تو ہمیں ان کو بھی تو سکھانا اور ان کو سمجھانا ہے نا. اگر آپ ساتھ نہیں ہوتے تو آپ بھی برے بن جاتے ہیں. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ تو پھر صحیح اور سچے راستے میں یہ جہاد تو پھر آتا ہے, اور ایسا تو کرنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے, یہاں صبر سے کام لینا پڑتا ہے نا. جی کیپ دیم بزی ود یوزفل ایکشنز, بالکل صحیح بات ہے. कि उनको इस माहौल में एब्जॉर्ब ना करने दें, कि वो बिल्कुल फारिग रहें और वो इर्द गिर्द की चीजों को देख के सिर्फ सीखते रहें। बिकॉज बुराई बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है इंसान को, क्योंकि शैतान अपने काम पे पूरे लगा हुआ है। बिल्कुल। और फर्स्टली टू बी अ गुड मॉडल, ये भी बिल्कुल सही बात है कि खुद अपने आप उनको शो करना चाहिए कि हम क्या करते हैं। हम जितनी बैक बाइटिंग्स में लगे होंगे और दूसरों की बुराइयां करेंगे तो वो भी यही सब सीखेंगे ना। बहुत सारे लोग दावा करते हैं, नहीं हम तो अपने बच्चों के सामने कोई नहीं उनको गलत बात सिखाते, लेकिन वो दूसरों की इतनी डिस्कस करते हैं कि वो खुद ब खुद बच्चों को सब पता होता है और वो ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं कि अच्छा ये सब करना होता है। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू से से नथिंग, यानी बिल्कुल बात नहीं है तो चुप ही रहना चाहिए, खामा खा की बातें नहीं निकालनी चाहिए। टू अंडरस्टैंड देम बिसाइड, ये समझ में नहीं आया मुझे। बाय नॉट डूइंग लॉन्ग वेस्टफुल चैट्स वन सेल्फ, जी बिल्कुल, यानी खुद अपने अमल से भी हम शोर करें शो करें। बिल्कुल सही बात है। दे आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग अस एज पेरेंट्स। और वाकई में कि आप सबने भी देखा होगा कि ऐसे बच्चे भी हमारे सामने आज एग्जाम्पल आते हैं कि बच्चे तो बेचारे खुद मासूम होते हैं, लेकिन उनकी तरबियत या उनका माहौल, वो जो भी चीजें सीखते हैं उससे वो बहुत ही छोटी उम्र से बहुत क्लेवर बन जाते हैं ना, और फिर वो चीज बहुत खराब है। और हो सकता है कि फिर अगर हम ये चीज दूसरों के बच्चों तक भी नहीं मुंतकिल करें या उनके पेरेंट्स तक भी इस कुरान को नहीं लेकर जाएं, तो फिर वो हमारे भी घर तक पहुंचेगी, फिर हमारे भी बच्चे वो सब सीखेंगे, यानी उसका इवेंचुअली नुकसान हम तक भी पहुंचेगा। तो वी हैव टू बी रियली वेरी कंसर्न नॉट ओनली फॉर आवर चाइल्ड, बल्कि इर्द गिर्द वाले बच्चों को भी समझाने सिखाने की कोई ना कोई तरीका करना जरूरी है। नीड टू वॉच टू ऑल देयर एक्शंस, स्पेशली वेन यंग, जी बिल्कुल, एक चिप्स लाख सुख, सही बात है, सही बात है। स्पेशली वेन यंग, बिल्कुल सही बात है कि हम उनके सारे ये सब चीजें भी चेक करते रहे। और एक और चीज भी हमने देखी कि स्पेशली दीनदार लोगों के ऊपर पिन पॉइंट करने से बचना चाहिए है। इसी क्या वजह है, यानी क्यों आपको समझ में है कि दीनदार को क्यों स्पेशली हम कहें कि स्पेशली उन लोगों का बहुत एक्स्ट्रा ख्याल करना चाहिए? खामा खामे कोई इल फीलिंग नहीं आनी चाहिए, दिल में भी अगर सोचें तो उसको निकाल देना चाहिए, और जनरली हर इंसान के लिए होना चाहिए, लेकिन ये एक जरा एक स्पेशल जोन है। तो इसकी क्या हिकमत समझ आती है आपको दीन की हिफाजत के लिए? बिल्कुल सही बात है कि फिर यही होगा ना कि मुसलमान आपस में जो कि आज हम देखते हैं कि वही लड़ते रहेंगे और बाहर दुश्मन को वो नहीं फेस करेंगे, वो दुश्मन के सामने नहीं एक हो सकेंगे और फिर उनकी अपनी कमजोरी बढ़ती चली जाएगी, है ना। और फिर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी चीजें वही चीज के हमारे सामने खुली नहीं है, हो सकता है अगले शख्स ने कोई बात इस तरह की हो जो हमें नहीं समझ में आई हो। और मोमेंट शुड सपोर्ट ईच अदर नॉट अगेंस्ट, बिल्कुल सही बात है। एनिमीज विल टेक एडवांटेज, बिल्कुल सही। और निजात पा गया जो चुप रहा, एंड थिंक गुड ऑफ देम, कीप आवरसेल्व्स इन देयर प्लेस, ये चीज बहुत अहम होती है कि जब हम अपने आप को सोचते हैं ना उनकी जगह, तो उससे भी बहुत कुछ क्लियर होता है। बिल्कुल सही आपने लिखा है। They are working in Allah subhanahu wa ta'ala's way and they are Allah subhanahu wa ta'ala's employees. और फिर ये कि हम किसी के इल्म को, किसी के भी ईमान को नहीं जानते कि कौन कितना अच्छा है, वो दिल का हाल वो वाली चीज तो अल्लाह ही जानते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस अपने आप को सेफ गार्ड करने में, कि कहीं यूं ना हो कि हम किसी को हर्ट कर दें या वो फिर हमें एक तरह से हमारे अपने नाम अमाल में एक प्रॉब्लम हो जाए ना क़यामत के दिन, क्योंकि लोग उनको स्पेशल जगह पे देखते हैं, ये भी वजह है। जी बिल्कुल, कि हो सकता है। और आप देखें कि ये जैसे इल्म के इल्म हासिल करने का ये भी एक तरीका है कि वी शुड नॉट जस्ट गिव वन लेबल बिकॉज ऑफ जस्ट वन डीड, और बाकी सब अच्छाई को हम छोड़ दें। बिल्कुल ठीक। चलिए, जज़ाकुम अल्लाह खैरन कसीर, उस्ताद रेडी हमारे साथ तस्वीर के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
من أحد أبدا. جی اسم الامیر رجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن پہ ٹھیک ہے؟ نہیں تو پھر کوئی اور لے لے مائک. ٹھیک ہے چلیے. ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ میں سے کسی کا. ان کا سوال یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی دے تو کیا, اور ڈاکٹر جس کی ذمہ داری لے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کا الگ ہے, تو ہمیشہ اسلام کا وہی معیار سامنے رکھیں کہ نب تیو لندہ بڑھ, ایسی خرابیوں کے آنے سے پہلے کے حالات پہ نظر رکھی جائے. یہ عمل ایک دم تو نہیں ہوتا نا. ایسی آزادی اور بے لاک قسم کی جب ہمارے ماحول میں آتی ہیں چیزیں کہ جس میں پابندیاں نہیں ہوتی, اور کسی ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا بچہ اس حد تک بگڑ چکا ہے, لہٰذا ایسی باتوں سے پہلے سے اوائڈ کرے. لیکن بل ابارشن تو نہیں ہو سکتا. اب آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا مزید اسی کے اندر سے ہم غور و فکر کریں گے. آیات جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں. آیت نمبر 19, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں. اس آیت پہ غور کیجئے تو اس آیت میں ایمان والوں کے خلاف ایک سازش ہے جو پکڑی گئی, اور وہ کیا ہے کہ فاحشہ ہو بھی لیکن فی الذین آمنوا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا ٹولہ موجود ہے جو بطور خاص ایمان والوں میں برائی فحاشی کو دیکھنا چاہتا ہے. اور فاحشہ کا لفظ کیا ہے؟ تشیع کا لفظ تو تھوڑا سا بتا دیا تھا, نشر و اشاعت کرنا, کسی چیز کا پھیلانا, شائع کرنا, اشاعت. اردو میں جتنے بھی ہم لفظ بولتے ہیں سب اسی سے. الفاحشہ کیا ہے؟ الفاحشہ کا لفظ جب ال کے ساتھ آتا ہے نا تو اس سے مراد زنا ہے, لیکن اگر ال ہٹا دیں پیچھے فاحشہ رہ جائے تو مراد کوئی بھی قول اور فعل جس کا برا ہونا واضح ہو, انسانی فطرت بھی اسے برا سمجھے اور معاشرہ بھی برا سمجھے. اسی طرح ایسی باتیں یا ایسا کام جو شہوانی جذبات کو ابھارے, یعنی لسٹ پروکنگ, ایموشن کرنے والا, سینٹیمنٹس کو ابھرنے والا. اور فواحش, فاحشت ان کی جمع. اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ لوگوں کا پلان کھول دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے بیچ میں فحاشی عام ہو جائے. اور اگر آپ دیکھیں تو سورت بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے, بدکاری بھی فاحشہ ہے. اور اسی طرح یہاں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو آپ میڈیا کے ذریعے اور جس کو آپ رسائل کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے, اور وہ سارے نام جن کو موڈ آف میڈیمز کہہ سکتے ہیں, ان سب سے جہاں خیر پہنچنی چاہیے وہاں اس وقت بھر چڑھ کر فحاشی پھیل رہی ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے جسم میں خون پھیلتا ہے تو پورے جسم کی صحت ہوتی ہے نا, کسی بھی سوسائٹی کا جو میڈیا ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ میسج جو آپ ون بائی ون کسی تک نہیں پہنچا سکتے, میڈیا کے ذریعے آپ ایک گھنٹے کے اندر شہر گلی گلی کونا کونا وہاں پہنچا سکتے ہیں. اگر وہ لوگ جو میڈیا, اور اسی طرح اب پڑھنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے لیکن بہرحال لوگ قرآن یا دینی کتابیں پڑھیں نہ پڑھیں, اخبار ابھی بھی پڑھتے ہیں, میگزین, ڈائجسٹ اور فکشن, ان چیزوں کے ذریعے جس طرح معاشروں کی اصلاح کی جا سکتی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں عموماً, سب نہیں لیکن عموماً, وہ لوگ جو خیر خواہ بھی ہیں, اصلاح کی نیت بھی رکھتے ہیں, اور جن کے دل میں انسانیت کی اور قومیت کی خیر بھی ہے, وہ بھی اس کو جس انداز سے پریزنٹ کرتے ہیں اس سے کچھ اور پھیلے نہ پھیلے فاحشہ پھیل رہا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ پہلے لوگ خبریں سنتے تھے, اب دیکھتے ہیں, بلکہ اس کے اندر بھی اتنی میلوڈی اور اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ ان کے کپڑوں کے ڈیزائن تک دکھا کے اس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کمرشلائز ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے دن میں 5 بار نماز دی تھی. سورہ قصص میں 21 پارے کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز فخش اور منکر سے روکتی ہے. جو بندہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہوگا وہ کبھی بھی فارغ نہیں ہوگا. آج سے اگر آپ نیت کر لیں کہ ہم سب کے اوپر مسجد میں ہوں گے یا گھر میں جو بھی حالہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد, اور جتنے بھی فواحش ہیں عموماً یہ عشاء کے بعد ہوتے ہیں, لیٹ پروگرام, پارٹیز, کنسرٹس, دعوتیں, دس اینڈ دیٹ. آج ہم صبح جلدی کیوں نہیں جاگ سکتے؟ آپ دیکھیے کہ آج کے دن دیکھ لیجئے جو چل رہے ہیں, راتیں کتنی لمبی ہو گئی ہیں, الحمدللہ ختم ہی نہیں ہونے کو آتی. بیچ بیچ میں بندہ اٹھ جائے اگر رات کو فجر عشاء کے بعد سویا ہو. کتنے بجے عشاء ہوتی ہے سٹارٹنگ ٹائم؟ 6:15. اب آپ سوچیے 6:15 ہے, لیٹ سے لیٹ بھی کوئی مسجد پڑے گی تو 7 بجے پڑھ لے. الحمدللہ مردوں نے اگر مسجد میں پڑھنا بھی ہے چلے 7 نہیں آپ 8 بھی کر لیں, 8 بجے سے شروع کریں تو فجر تک آپ دیکھیے کتنے گھنٹے بنتے ہیں. عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر کر بستر پہ جانا یہ مسنون عمل ہے. جب ہم راتوں کو دیر سے جاگتے ہیں تو ہم دیر سے اٹھتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ فاحشہ کے اندر پھر گندی باتیں, بیکار باتیں, مشغلے اور انٹرٹینمنٹ, اور پھر اس میں وہ ہر چیز آتی ہے جس کو ہم ٹائم ویسٹرز کے طور پہ کہہ سکتے ہیں یا جن کو صرف ٹو کل دا ٹائم ہوتا ہے, گپے مارنا, ابھی تو بیٹھے ابھی تو بڑی دیر ہے, نہیں بھائی عشاء ہو رہی ہے جا رہے ہیں, نہیں نہیں ابھی تو وقت چل رہا ہے, ابھی تو 8 بھی نہیں بجے آپ جانے کی سوچ رہے ہیں. یہ حالات کب ہوتے ہیں؟ جب ہمیں گپ شپ کی عادت ہوتی ہے. جس نے فجر پہ اٹھنا ہے وہ رات کو نہیں سو سکتا. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں کو دیکھیں. اب یہ تو ایک بگ پلان ہے نا پوری دنیا کا, آپ اپنے میرے چھوٹے سے گھر کو دیکھیں کہ میرے گھر میں کس کس طریقے سے فاحشہ پھیل رہی ہے, کیا طریقہ ہے. اگر آپ دیکھیے کہ بچوں کو اسکول کی تعلیم سے دیکھ لیں تو کو ایجوکیشن میں بچوں کا جانا جبکہ وہاں حدود کی پابندی نہیں ہے, پھر وہاں کا ماحول ہے, پھر اس کے بعد عورتوں مردوں کا ملنا, لڑکے لڑکی کا ملنا, بچیوں کا اکیلے سفر کرنا, پھر اسی طرح آپ دیکھیے آج کل کے ٹیلی فون اور میڈیا اور نیٹ نے اور چٹ چیٹ نے تو ہر کام کو پیچھے چھوڑ دیا. میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ 5 سال بعد ای میلیں نہیں ہوں گی, کیونکہ اب ہر وقت جب ہاتھوں میں گیجٹ ہیں اور اسپونٹینیسلی میسج ہوتا ہے, ای میل کی تو ضرورت شاید کبھی کسی کو پڑتی ہو, تصویریں تک تو آپ فون پہ ایک دوسرے کو اور ڈاکیومنٹس تک تو اس پہ بھیج لیتے ہیں, تو اور حقیقت ہے کہ ای میل نہیں رہنی تو کمپیوٹر بھی نہیں رہنے, یہ سب ختم ہو جائیں گے. 5-10 سال کی باتیں, یہ اب ہر وقت ایک چھوٹی چھوٹی چپ ہمارے ہاتھوں میں ہوگی, پوری دنیا سے ہم کنیکٹڈ ہیں, ایسٹ سے ویسٹ تک آپ جہاں گھومیں آپ ان چیزوں پہ رہیں. چیزیں تو یہ بڑی کام کی ہیں لیکن چونکہ پیچھے سوچ اچھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ نقصان ہے. پھر آپ دیکھیے کہ لٹریچر کون سا آتا ہے گھر میں. ہم سب اگر آج جا کر چلے اس ویکینڈ کو بھی ساتھ ملا لیں, اپنے گھر کو A to Z دوبارہ کلین کریں. میرے گھر میں کوئی ایسا فکشن ہے, ناول, ڈائجسٹ, پھر آپ دیکھیے کہ اس میں کئی کچھ قسم کی اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں جس میں عموماً آپ دیکھیے, نام نہیں لینے کو دل چاہتا لیکن ہمارے ملکوں کے معروف اخبار ہیں جن کو لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, جو ویکلی, اس کے بڑے پیج پر تصویر کس کی ہوتی ہے شروع میں اور وہ کیسی ہوتی ہے؟ کیا ہم سب جتنی بھی ادھر بیٹھی ہیں ہم میں سے کوئی ایک بھی اس جیسی ہے؟ اور ہر گھر کے مرد کی نظر اس ماڈل پہ پڑتی ہے. اب وہ ایک ماڈل جب دیکھتا ہے ایک اخبار پہ, کیا اس ایک معصوم 8, 16, 17, 18 سال کی عمر کے لڑکے کے ذہن میں ایک آئیڈیل نہیں بن جاتا؟ ٹی وی کھولتے ہیں تو ڈراموں میں کس قسم کے ماڈلز دیکھتے ہیں, فلموں میں کون سی ہیروئنیں ہوتی ہیں, ایڈورٹائزمنٹ جو چلتے ہیں وہ جو عورتیں مچھر اور مکھیاں مارتی بھی دکھتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں, ہمارے جیسی ہوتی ہیں؟ وہ تو مکھی اور مچھر مارتی بھی اتنی خوبصورت لگے, اور ان کے چہروں پہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی چیز تو ایسی نہیں ہے کہ جو عورت کے بغیر بکے. کوئی ایڈورٹائزمنٹ آپ ڈھونڈ کے بتائیں, ایون عورت سے ریلیونٹ نہیں ہے نا, عورت نے پکڑی ضرور ہے کہ مرد کو کہ تپٹی سے ریزر کر لو, اس سے بانٹ لو. ہر چیز میں عورت, بڑے بڑے بل بورڈ دے دیجیے, آپ کو مجھے کہاں یہ میسیجز نہیں رہے. بڑے بڑے اشتہاروں کو دیکھیں. ان ملکوں میں تو تھوڑی پابندی ہے تو اشتہار چھوٹے لگتے ہیں, آپ کبھی اپنے ملکوں کے تو دیکھیے, اوپر سے نظر شروع ہوتی ہے, یوں نیچے ہیں تو وہ عورت کی صرف آدھا. آپ 8 منزلہ اگر بلڈنگ بڑی دیکھیں, بلڈنگ میں کو بتا دوں, میں کہتی ہوں اتنی بڑی بناتا کون ہے اور اس کی اجازت کیسے, دکان تو یہ نیچے اندر پوری بلڈنگ سے وہ خرید لیتے ہیں پیسے دے کے, اپنا بڑا بورڈ لگاتے ہیں اور کچھ بلڈنگ اتنے آپ دیکھیں 8 فٹ کا عورت ہے اور اس تصویر میں آپ کو میرا خیال ہے 60 فٹ بھی لمبی ہو, کیا اس پہ نظر نہیں پڑتی؟ اور جو مرد ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, کیا وہ اپنی بیوی پھر جو اپنے گھروں کے ماحول ہیں جو کچھ, اور جو فلموں سے چیزیں وہ کیا کہتے ہیں جس کو سٹوری مل گئی, ویلن ہوتا ہے عموماً فلموں میں, یا ماں یا باپ, یا لڑکے کے ماں یا لڑکے کا باپ, اور سارے ناظرین کی ہمدردیاں کن کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اللہ کرے یہ لڑکی گھر سے بھاگ جائے اور باپ کی آنکھ نہ ہی کھلے تو اچھا, لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پکڑی نہ جائے. ہر طرف آپ دیکھیں گے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, وہاں فلموں میں بولڈ کر کے دکھاتے ہیں, باپوں کے سامنے بچیاں بولتی ہیں, کیا اس کا اثر عام زندگی میں نہیں آتا؟ اور ہر لڑکی پھر اپنے آپ کو ہیروئن سے کم تو نہیں سمجھتی. ہیروئن کون ہے؟ اگر آپ عام لفظوں میں دیکھیں, ہر فلم کے بھی اندر ایک لو سٹوری ہوتی ہے اور دو کردار, ایک ہیرو ایک ہیروئن, وہ کون ہے؟ فاحشہ پھیلانے والے. اور جو حرکتیں اور جو بھی فلموں میں دکھاتے ہیں, کیا وہ مومنوں کے گھروں میں ہونے چاہیے؟ چلے آگے, تو ایک ڈھکا چھپا دور تھا, مجھے تو آج کا کچھ اندازہ بھی نہیں ہے کہ جی یہ چیز بچے نہیں دیکھ سکتے. کون دیکھ سکتے ہیں؟ امی ابو دیکھ سکتے ہیں. کیا امی ابو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہسبینڈ وائف اکیلے میں بھی کوئی ایسی چیز دیکھ سکتے ہیں جو بچوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتے؟ اور بچوں سے آپ 10 دفعہ چھپائیں گے نا, وہ پھر بھی ڈھونڈ کے وہ اخبار نکال ہی لیں گے کہ یہ کون سا رسالہ ہے جو صرف امی دیکھ سکتی ہیں, اور یہ کون سی فلم ہے جو صرف ابو امی دیکھتے ہیں اور رات دیکھتے ہیں. یاد رکھیں یہ زہر قاتل ہے. ماں باپ کا اپنا تعلق, چاہے ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے, بچوں کے اندر جاتا ہے. جو چیز آپ اپنے باپ بھائی بیٹے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی, وہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتے, اور وہ چیز بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی. کون بنائے یہ فلمیں اور کون یہ گندگی پھیلائے اگر ہم لوگ دیکھنے والے نہ ہوں؟ اور آپ کسی ایسی جگہ جہاں یہ چیزیں بکتی ہیں یا کرائے پہ ہوتی ہیں, وہاں سے تو گزر نہیں سکتے. وہاں اتنی گندگی, اتنے گندے پوسٹرز, اتنی گندی تصویریں کہ عام کرو. یہاں تو مجھے, میں نے اتنا کبھی غور نہیں کیا, لیکن کہیں اور کی بات ہے, ہر ویک یا 2 ویک کے بعد جو سٹاپ ہوتے ہیں, جو بس سٹیشنز ہیں, بس سٹاپ ہیں, یا ٹرین سٹیشنز تو کم ہیں, بالکل ہمارے سکول کے سامنے بس سٹاپ ہے. اب وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک چھجا سا بنایا ہوا ہے گرمی سردی سے بچنے کے لیے. ہر بندے نے وہاں جانا ہے اپنی ضرورت, ایون چھوٹے چھوٹے بچے, 4-4, 5-6 سال کے بچے بھی اکیلے بسوں میں سفر کرتے ہیں, اس نے وہاں بس کے انتظار میں کھڑے ہونا ہے. ادھر بھی ایک ننگی تصویر ہے تو ادھر بھی ایک تصویر ہے, اور ہڈن میسجز. اور وہاں کھڑا ایک لڑکا, آپ خود سوچے, اپنے اوپر نہ لیں, آپ سوچے ایک بالکل ایسا لڑکا ہے جس کی ایج ہی ایسی ہے کہ اب اس کو سسپینس شروع ہو گیا کہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں, اور جو آ کے بس اسٹیشن پہ کھڑا ہو گیا, کیا وہ اس تصویر کو نہیں دیکھے گا؟ اس کی ماں تو ایسی نہیں ہے نا, اس کی بہن تو ایسی نہیں ہے نا, نظروں سے حیا ختم ہو گئی. اور کئی دفعہ بھائی بہن کھڑے ہوتے ہیں وہاں, کئی دفعہ مائیں بچوں کو چھوڑنے آتی ہیں تو وہاں کھڑی ہوتی ہیں. کیا یہ خراب چیزیں, جانور بھی ایسی چیزیں عام کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جانوروں میں بھی سیکس ہے, لیکن وہ اس طرح سے نہیں کرتے کہ کوئی ایسا گندا کام کرے اور سارے بیٹھ کے اس کو دیکھے. کبھی تو تنہائی میں دیکھتے ہیں, کبھی لوگ مل کے دیکھتے ہیں, کپلز بیٹھ کے دیکھتے ہیں. آنکھیں نہیں تھک جاتی, انسان کی آنکھیں نہیں جل جاتی. یاد رکھیے کہ جس آنکھ نے ایسی کوئی چیز دیکھی ہے, یہ جس آنکھ نے سنی ہے, اس کا اثر زد کی عبادت میں کمی میں آئے گا اور اس زندگی میں. آج مردوں کی نظریں کیوں بیویوں سے خوش نہیں ہیں؟ وہ کیوں غلط چیزوں کے تقاضے کرتے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہتے کیا کریں بچوں کی, دیکھیں آپ بتائیں کہ ہم دین کو پھیلانے کی کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ ہم جتنا مرضی رو لیں, وہ یہ مفت تو نہیں ایڈورٹائزمنٹ ہوتی, یہ اشتہار مفت تو نہیں لگتے, اور یہ ایک ایک چیز, بعض دفعہ مفت میں ایسی چیزیں وہ بانٹتے ہیں. آپ اپنے کام کرنے کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو اتنے گندے ایڈ وہ بھیج دیتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ پیسہ لگتا ہے, سکلز لگتی ہیں, وقت لگتا ہے. ایمان والے سو رہے ہیں کیونکہ उन्होंने अपनी बातें बहुत कर ली हैं, उनका अपना वो, अब उनके बच्चों की शादियां हो गई हैं, अब उनके मियाँ की जॉब लग के रिश्ते हो गए दिस एंड दैट, अब वो अपनी जिंदगी, ये आज हम सोचा को फैलाया। कोई कितना भी आपका घर गंदा करे, अगर रोज साफ करेंगे तो घर साफ हो जाता है। जब दुनिया में लोग गंदगी फैला रहे हैं तो मैं और आप इसको साफ करने में क्या करें? अल्लाह ने हमें इतना प्यारा चाहिए, जो बेचारे यहां नहीं आते वो तो बस अल्लाह उनकी कबूल करे, इबादत और उनके फराइज हैं वो उसको भी कबूल कर ले तो बड़ी बात है। मैं और आप अपने अंदर कौन सा जोश देखते हैं, किस हाथ से हम दुनिया से गंदगी फैला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और किस हाथ से इस दीन के पैगाम को हम कर रहे हैं? मिलियन एंड मिलियन डॉलर्स लगता है सिर्फ गलत चीजों को फैलाने के लिए, ये गंदी चीजें, तस्वीरें, ये आप कह लें कि बातिल अध्यान की जो तरवीज है ना उसके लिए वो लाखों लगाते हैं, हम कितना लगाते हैं? एक या दो, और वो भी तब जब हमारे पास कोई फालतू चेंज हो, कभी भी चेंज नहीं आएगा। सहाबे कराम के दौर में ये गंदगी क्यों नहीं थी? इसलिए कि वो जाग रहे थे। फिर आप देखिए कि वो बनाते हैं, हम देखते हैं, हम प्रमोट करते हैं, हम किसी न किसी लेवल पर तो इनको जगह दे रहे हैं ना। हम क्यों ऐसी दुकानों से शॉपिंग करें कि जो स्लीवलेस कपड़े बेचते हैं? हम क्यों ऐसी चीजों, चाहे वहां से अच्छी चीज क्यों ना मिलती हो, हम क्यों खरीदे कि उन्होंने उससे गलत चीजों को प्रमोट करना? वो औरतों को नंगा करके मॉडल बना बना के, उनके स्टैचूज बना बना के तस्वीरें आपको खिला के जाके दिखाते हैं, तो क्या हम उसके अंदर किसी जगह हिस्सेदार नहीं है? ऐसी मूवीज, ऐसी चीजें मामलों करें ना, तो शीन या शायद आसान लगेगा आपको, हम चीजों को प्रमोट करते हैं और कहते हैं वो बात को भड़काएं जिससे गुमान आ जाए। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों मना किया गया, इसमें आखिर खराबी क्या है और इतनी सख्त सजाएं क्यों? इसलिए कि फाहिशा जो है ना ये जिना का दरवाजा है। जब तक बुराई छुपी रहती है ना, टेम्पटेशन नहीं होती। पीछे कोई भी अच्छी चीज पड़ी हो ना और ऊपर कवर्ड हो तो हमें पता भी नहीं चलेगा, और अगर यहां लाके ऊपर से उसका कपड़ा उठा दें तो हम सबके मुंह में पानी आएगा कि हम इसको खाएं। आज गंदगी को डेकोर करके, खूबसूरत करके, सजा के यूं पेश कर दिया कि चाहो या ना चाहो तुम्हारी नजरें उठती हैं। कितना भी कोई नेक मर्द क्यों ना हो, क्या बाहर जाकर वो आंखें तो नहीं बंद करेगा ना? एक नजर पड़ेगी वो छुपा लेगा, नजरें झुका लेगा, दोबारा नहीं देखेगा, पड़ती तो है ना नजरें। लेकिन इसके लिए अमली तौर पर मैं और आप क्या कर सकते हैं, ये है सवाल। आप बताइए क्या कर सकते हैं, आप अपने अंदर क्या फील करती हैं? आज थोड़ा सा अपने दिल की बात तो बताएं। ये 17 पारे, अब 18वां पारा भी आधा हो रहा है, आपके अंदर कोई हलचल मची है कि नहीं मची, कि बस ऐसे बैठ के यहां पढ़ना है और पढ़ के चले जाना है और कोर्स खत्म तो घर बैठ जाना है? कितने लोगों को लगता है कि अब जिंदगी में कुछ करना है वो हाथ खड़े करें? कैसे करना है ये सब, कैसे होगा? जी नरीन आंटी।
दादा जी, अगर मैं चाहती हूँ तो मैं तो कुछ नहीं देखती ना लगाती ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ लगा लेती,
तो आप लोग मना करें। देखिए अच्छी देखिए असल बात पता क्या है, सच्ची बताऊं, मैं जिस चीज पे मैं पहुंची हूँ,
मतलब अब मैं 11 भी बज जाते हैं तो मैंने तो सोना ही होता है ना।
मैं आपको एक सच बात बताऊं, अगर मैं और आप जितने यहाँ बैठे हैं अगर हम अपने अमल के अंदर पक्के हो जाए ना, तो दूसरों को हम उनकी बातों पे नहीं कायम रख सकते। मुझे तो किसी की नहीं फिक्र, ना आप अपने मियाओं में से किसी की कोई बात करें, बात ये करें कि मेरे अंदर क्या ग्रज है, मैं इसके अंदर अपनी जिंदगी में क्या मैं कर सकती हूँ। जी जी आप
वाइफ नहीं होती
करके उसे भी नहीं बता दिया कि अगर मुंह से जितना हाथ से रखो या मुंह से रखो या दिल से नफरत करो तो
जी देखिए कि जब तक अमली कदम नहीं उठते, मुझे जो मेरी अपनी समझ में थोड़ी सी चीज आती है वो ये है कि जब तक आपके अंदर एक हलचल नहीं मचती ना, आप दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। किसी ने आपको कोई चीज दे भी दी ना, तो वो चीज इधर से जाके उधर पड़ी, चीज उधर पड़ी रहेगी। हम उसको उस तरह से आम नहीं कर सकते। वजह क्या है कि हमारे अपने अंदर दुख नहीं है। आप में से कितने लोग खुद को सफाई पसंद कहते हैं? मेरा ले आप सभी दावा करेंगे मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। क्या हम अपने घर के अंदर गंद पसंद करते हैं? गली में, दरवाजे के आगे, कोई हमारे गली के बाहर कोई कचरा फेंक जाए, कोई 2 दिन कम्यून वाले सफाई ना करने आए, तो इतना ग्रज और इतनी नफरत हमें इस बुराई से है कि नहीं? हम सिर्फ सब्र किए हुए हैं। हम ऐसे मॉल्स जहां पे ऐसी गंदे मॉडल्स और तस्वीरें हों वहां से शॉपिंग क्यों करें? हमारा अपना अमल कितना है? और आप देखिए कि लोग तो अपना काम करते रहेंगे, पहले दर्जे पे मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि अपनी जात से इन चीजों को दूर करके, कि मुझे ऐसी कोई चीज लेनी नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा, चल ले लेते हैं, फिर इधर कपड़ा लगवा देंगे, इधर कटा देंगे, करा देंगे। मिसाल है कि स्लीवलेस कपड़े, यकीन करें मैं हैरान होती हूँ कि अब जो दुल्हनों की शादियों के जोड़े देखती हूँ मैं, एक आध जगह मुझे नजर पड़ी, मैं हैरान हो जाती हूँ कि कभी ये फिल्मों में नाचने वालियों ने पहने होते थे, पीछे से भी नंगे आगे से भी नंगे। कोई है बड़ा जो उसके अंदर कपड़ा स्किन कलर का लगवा ले, दूर से लगता है कुछ नहीं, पास हो तो लगता है कपड़ा लगा हुआ है। हमारी दुल्हनें जिनको सब देखते हैं, बाजू भी नहीं पूरे, आगा भी कुछ नहीं, पीछे भी नहीं, ये अब ये हमारे घरों में आ गए। वो ड्रेस जो किसी ड्रेस कहते थे जिनको नाचने वालियों के कपड़े, दुल्हन का ड्रेस है जिसको हर बंदे ने देखना है, बूढ़े ने चाहे बेटी कह के प्यार देने के बहाने आना है देखना उसने भी है, और भाई बन के और कहीं कजन बन के देखना सबने वो जो कपड़े आज पहनती है। मैं तो उस पर मेरा तो मैं सोचती हूँ कि लोग खुशियों के लिए जाते हैं, मैं ऐसी जगह हूं तो मैं रुक के आती हूँ। हो क्या क्या हमको हमारी अपनी औरतों में, औरतें जिस कपड़ों में चल फिर रही होती यकीन नहीं आता, मर्दों करके आना है तो यकीन नहीं आता। तो मैं सोच रही होती ऐसे वक्तों पे कि इनके अंदर ये जज्बे क्यों नहीं आ रहे, आएंगे इसलिए कि असल असल पानी नहीं है ये इल्म का पानी, ये वो दौलत है जिस। और अगर मैं और आप फिर मजबूरी कुछ कि अगर आप इस क्लास के 4 घंटे इसके लिए मैं एक दफा टेस्ट देने के लिए कुछ पढ़ते हैं, अगर आपकी जरूरत, आपको सच कह दूं कि आपके दिल में जज्बे नहीं है, इनके अंदर वो तो सो नहीं पाते, वो तो नाइट चेंज आ जाती कि बस आज आपका पूरा काम पे आ गए, हवाएं तो बारिश से पहले हो जाती है। ये 18 पारे तक आप अंदर अमली करें, ये करें सोशल लोगों में दीन की देना है, क्या बस चांसेस मौजूद, हम वो छोड़ के खुद अपने शौके होके वक्त पे भी, ये भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है। अंदर पर याद रखें कि दिल मुर्द नहीं, इस दोबारा जब तक हम खुद नहीं तड़पेंगे और एक एक की तलाव है। अगर आज मुझसे लग कुछ कि मैंने तलब ही नहीं की, मेरे अंदर वो खाए इस तरह महसूस होता है कि वो तो इतनी दिखा रहे, लेकिन हम सच्चाई फैलाने के लिए इतने मजबूर हैं। कोई आपकी चीज है जो आप शेयर कर सके कि अमली पर मैंने ऐसा काम किया जिससे वाकई की बुराई खत्म हो गई, कुछ किसी का एक्सपीरियंस, कोई ऐसी बात? इतना बुरा असर रखती, और इसने हमारी यूथ को खराब किया हुआ है, उनकी सोच खराब है, इसी से हमारी बेटियों की सोचें बदली हुई है, इसी के साथ हमारे मर्दों की सोचें खराब है। आप देखिए कि जी आप बोले कुछ जी
कुछ दिनों के लिए गाने रोक दो,
जी, गाना जो है वो जिस्म के ऊपर इस तरह असर करता है जैसे सब्जा उगता है बारिश के पानी से। दिल के अंदर गंदे ख्याल आते हैं। और हमारी नस्ल किस तरह, आप देखिए कि म्यूजिक की रस्सी है, अगर आप उनको कुरान से जोड़ते हैं या उनको थोड़ी सी इस चीज टेस्ट को चेंज करते हैं तो बहुत सारे जज्बात बदल सकते हैं। जी आप जी, हम शायद मुझे लगता है बेहिस हो गए। आज भी जो लोग नए नए मुसलमान होते हैं ना, उनके अंदर जोश और जज्बे आते हैं, लेकिन हम चूके कर चुके हैं तो बस हम सोचते हैं कि हम तो बस बहुत नेक हैं। जी इधर से पीछे आप इशरत, आपने हाथ कर। आप उस पर कमेंट दें कि आई डोंट लाइक इट, ये एक्सपोज नहीं किया ना। आप देखिए फेसबुक की बात करते हैं, आप तो टेलीफोन के नामों के साथ आपकी तस्वीरें, हर तस्वीर से आपकी सोच पता चल जाती है कि आपके दिमाग पे क्या लगा हुआ है। तो कम से कम हम खामोश तरीके से ऐसे मैसेजेस देकर और अपनी जात से, क्योंकि ये जो अब सिस्टम्स हमारे पास बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके जरिए तो हम इतना हम कर सकते हैं। अब जैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप है, हम अभी जब मैं पाकिस्तान में एक दिन के लिए थी वहां, तो उधर मैं ने उनसे एक दर्श रखा, बल्कि आप सुनना चाहें तो सुने, उसमें पूरा प्लानर दिया था कि किस तरह एक साल का गोल लेकर ड्राइवर खुद मर्दों शौरों को कुरान के तर्जमे से गुजारे। उस पर हमने काफी डिटेल से बात की, उसी क्लास में हमने बैठ के बात की कि चले अगर आप चाहें तो हम एक ग्रुप बनाते हैं, और खुलासा कुरान मेरा लिए सबसे शॉर्ट तफसीर है, 20 मिनट में एक ग्रुप होता है। तो हर दिन एक ग्रुप का आपको लिंक देंगे और आप सुनेंगे, बस आपका काम यह कि आपने दिन के 24 घंटों में किसी भी वक्त उसको सुनना है और ओके कर दें कि हमने सुना, अगले दिन दूसरा लिंक है। इतने लोगों ने वो आइडिया पसंद किया, कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के पूरा ग्रुप बन गया, छोटी सी एफर्ट है। अब आप देखिए कि अगर आप एक ऐसे ग्रुप में 20 मिनट का एक लिंक रोज भेज के सुन रहे हैं, कितने लोगों तक कुरान पहुंच सकता है। और बड़े बड़े गोल जब लोग नहीं ले सकते तो छोटे छोटे गोल लेने पसंद कर जाते हैं। जी इधर से आपने हाथ खड़ा किया था, फरहत आप ले। जी इसलिए कि खुद नुमाई है, मैं तो जिसकी तस्वीर है उसके नाम के साथ या कहीं भी देखूं तो मैं सोचती हूँ ये अपने आप को इतना कि बस अब मैं पकड़ूं और सबको दिखा दूं। अमूमन तो आप देखें ना कि वही चीजें लोग शो करते थे जो बेचनी होती हैं, या सजाई वही चीजें जाती है ना कि जो दूसरों की नजरों में आती हैं। तो बहरहाल इन चीजों पर नजर रखने की जरूरत है, और किसी के पास कोई बात है? जी आप मुसलमान जो मोहल्ले के लोग, वो भी कैसे लोगों के लिए बात है। जी, असल बात देखिए, हम 10 बातें भी करेंगे या 100 भी करेंगे ना, सब का खुलासा ये कि इस दीन को आम कर दे। ये दीन कैसे आम होगा, किस तरह से होगा? आप देखिए कि ये जिस तरह एफर्ट्स के साथ लोग बेदीनी फैला रहे हैं ना, उसी तरह एफर्ट्स के साथ ये दीन फैलाने की जरूरत है। और अगर हमारे दिल में बुराई से नफरत नहीं है और हम इस जो खूबसूरत चीज है इसको दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो फिर दूसरों से तो बिल्कुल तवक्को ना रखें। को बाहर बैठे लोग तो नहीं इस चीज को सोच सकते, इसके लिए हमें खुद को सोचना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह ताला दिल खोल देता है, फिर इंसान को इस दुनिया में रहकर वो अनदेखी जन्नत नजर आने लगती है कि जिसके अंदर इंसान अपनी जगह बनाता है। और फिर आप वाकई फील करते हैं कि कुछ करना है। हम कुछ कर सके कि ना कर सके ये बड़ी डील नहीं है, ये देखना है कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारी दुआओं में क्या है। हम लोगों से मिलते हैं, क्या उस वक्त कोई नेकी का मौका होता है? हम उनको कोई दावत दे सकते हैं, कोई दीन की दावत, कोई बात अच्छी कोई ऐसी कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं और हम नहीं करते तो समझ लीजिए कि हमारे दिल में अभी जोश ही नहीं है, हमारे अंदर वो जज्बे नहीं है। इसके लिए अल्लाह से तड़प मांगे। अल्लामा इकबाल ने रो रो के अपने लिए, अपने बेटे के लिए यही दुआएं की थी कि अल्लाह मुझे वो दीन की तड़प दे। अपने बेटे को बददुआ देते थे कि खुदा तुझे किसी बहर से आशना कर दे कि तेरे खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं है। मुझे जो चीज फील होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आज हम मुसलमानों के अंदर इस्तराब नहीं है, हम बहुत बेहिस लोग हैं। बहरहाल जो भी लोग इसमें कोशिशें करते हैं, आप लोग भी करते हैं या जहां से भी कोई करता है, वो अल्लाह ताला उनकी कबूल करे और हम सबको इसकी तौफीक दे कि हम अपने जान माल, अपने वक्त, अपनी एफर्ट, अपनी एक एक चीज को इस रास्ते में लगाएं कि अल्लाह ताला तू हमसे कुछ करा। मिसाल है कि आप देखिए कि हमेशा इंसान माल नहीं लगाता, हमेशा इंसान के पास मादी चीजें नहीं होती। तड़पना, दुआ करना, लोगों की हिदायत के लिए कुछ अमली बातें करना, रात को रात सो के रो के सोए, बहुत करें ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जब अमल का वक्त आए तो हम अमल ना कर सके, उससे क्या होगा? बातों से तो कुछ नहीं होता ना, अमल की जरूरत होती है। और इंशाल्लाह जितना अमल करते जाएंगे आप देखेंगे कि उतना आपका और करने को दिल जाएगा। मुझे तो सबसे ज्यादा आपकी फिक्र है। अगर आपके अंदर मुझे जोश और आपके अंदर वो दीन की तड़प नहीं दिखेगी जो होनी चाहिए, तो मैं सोचूंगी कि ये खोखले नारे हैं, ये सिर्फ बातें हैं हमारी जो हम दूसरों को सताने के लिए करते हैं। असल बात है कि हम अभी खुद भी इन चीजों के काबिल नहीं हुए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए इन सारी चीजों को आसान कर दे और अपना मुहासबा खुद करे। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, हम खुद से पूछें कि हम इस वक्त इन पारों को पढ़ने के बाद अपना मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं? क्या को कितने लोग हैं बाय द वे जो कोर्स के बस पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं? मुझे तो नहीं बताते आप, लेकिन आपके दिल में अगर है तो अल्लाह जानता है। घर वालों को भी अब कहा है बस 12 साल रह गए आई में वापस। हम सब अपनी जिंदगी में पलटना चाहते हैं। जी रशीदा जी, आप वो दिखा दें इनकी चीजें। आसफा जी, ये दुआ किया करें कि आप हमारी जिंदगी इसके बगैर कभी भी जुदा ना हो। ये आसफा ने कुछ शेयर करनी है आपके साथ चीजें, ये थोड़ा सा ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं तो बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए में हमारी जो सिस्टर्स हैं जिन्होंने इस साल कुछ ने दौरे कुरान किया, कुछ मानते हैं, तो वो वहां उन्होंने एक जगह जमा की, फिर वहां से कोई बर्मिंगम आया तो बर्मिंगम में उन्होंने ये चीजें भेजी, परसों मेरे हाल आपको मिली है जी। ये सब चीजें आपके स्कूल, ये अब तो मुझे प्रोजेक्ट कहते हुए भी डर लगता है कि उसका करने ही गया हमने, लेकिन ये देखे। और इसके साथ एक लेटर भी आया था, इरम वो किधर है? उन्होंने उन्होंने मुझे ये बताया था कि जिन्होंने ये बड़ी माला दी है उन्होंने इसके ऊपर एक पूरा एक लेटर लिखा हुआ है कि मैं इसको इस सोच के साथ ऐनुल जारिया को दे रही हूँ कि ये मेरे लिए कर वाकई ऐनुल जारिया बन जाए, बहता हुआ चश्मा बन जाए। तो ये जज्बे होते हैं, मोहब्बत होती है, ये चीजें नहीं होती, ये असल में लोगों के जज्बे हैं। तो अब इनकी हिफाजत आप सबने करनी है। अगर ऐनुल जारिया के साथ नाम यूके का लगा हुआ तो ये यूके में बनना है और बनाने वाले आप हैं। आप नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह, उनकी चीजें तो नहीं जाया जाएंगी, उसको अल्लाह कहीं भी लगवा देगा उनसे पूछ के। लेकिन ये है कि हमेशा अपने दिल में इस चीज की तड़प रखें कि दूर बैठे हुए लोग, एक थैली और भी है वो कल इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगी। लोग बाहर से आते हैं, शौक से आते हैं, हालांकि ये वो चीजें हैं कि जो
उनके जज्बे हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उन्होंने तो अनदेखी जमीन है ना उनके लिए, उनके उनके दिल में ये तड़प क्यों है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि हमारा हिस्सा डल जाए, किसी भी जगह हम काम करें हमारा हिस्सा डल जाए। और मैंने ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों साथी देखे अपनी जिंदगी में कि जिनके दिल में इतनी इस दीन की मोहब्बत है कि वो अपना अपनी जाती चीजों को भी अल्लाह ही की समझते हैं। तो बहरहाल ये उनकी अमानते हैं, आप लोग इसको रखें, तो दुआ भी करें, हम सब के लिए दुआ करते हैं कि जिन्होंने भी ये चीजें जनरेट की हैं अल्लाह ताला उनको रिजल्ट दे, और जो भी लोग इसको यहाँ तक पहुँचाने में मदद कर, किसी भी रंग में कितने लोगों को हिस्सा डल जाए, ऐसे एक रहता है, लेकिन दूसरा जो वो उस चीज को फिर जाकर ले आता है, कई लोगों के इतने करते हैं, तो बस दुआ करेंगे ये सारी चीजें दुनिया से ख्वाहिशों को खत्म करने के लिए। ये तो आप भी गवाही दे सकते हैं, जी
लेटर अगर पढ़ना है
जी पढ़ लीजिए।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope this letter finds you in the best of health and iman. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this investment in akhirah, forgive us and make us among muflihun. May Allah subhanahu wa ta'ala give barakah in the Ainun Jariya project and make it a successful project to spread his deen. Ameen. Jazakallahu khairan wa ahsanu al-jaza. Nur al-Quran student.
जो भी दे जिस तरह से भी दे अल्लाह उसकी उसके दर को भी कबूल करे और हमसे इसकी बेहतरीन कदर कराए। अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह खूब जानता है तुम नहीं जानते, हर बात की हकीकत अल्लाह को पता है। और जिन लोगों के ये मामले हैं उनके क्या प्लान्स हैं और तुम्हारी कोशिशें कितनी है अल्लाह को खूब पता है। वलौला फजलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु, और अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत, वअन्नल्लाह रऊफुर रहीम, तो यकीनन अल्लाह ताला बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला। ये अल्लाह का फजल और रहम है जो हम बच्चे में, इंसान को हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, हजरत आयशा के ऊपर एक तूफान उठा और वो तूफान अल्लाह मेरी जिंदगी को भी दूसरी, इसी पर मजीद बातें आयत नंबर 21 से 26 तक में कही गई कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तत्तबी खुतुवातिश्शैतान, ऐ अहले ईमान शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। पहले भी आयत आई है सूरह बकरा में, यहां दोबारा आई, क्या होगा? वमई यत्तबी खुतुवातिश्शैतानी, और जो कोई शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करेगा तो शैतान का हाल क्या है? फइन्नहु यामुरु बिल फहशाई वल मुनकर, तो शैतान तो इसे बेहयाई और बुराई का ही हुक्म देगा। खुतवात शैतान से यहाँ क्या मुराद है? वसवसे, वो वसवसे जो आयशा के खिलाफ दिलों में शैतान ने डाले और लोग उसका शिकार हो गए। शैतान हमेशा अच्छे लोगों की बुराइयां दूसरों के दिलों में डालना चाहता है। देखिए आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में शर और फहश को फैलाने वाले कितने लोग हैं, लिमिटलेस होंगे। चैनल्स देखिए, मीडियम देखिए, फिल्म इंडस्ट्रीज देखिए, न्यूड फिल्में बनाने वाले देखिए, और जो गंद फैलाने वाले हैं मेरा ख्याल है कि हजारों नहीं लाखों में इससे भी ज्यादा उनकी तादाद होगी। इंडस्ट्रीज मशहूर है, शहर मशहूर है, मुल्क मशहूर है, एक फिल्म बनती है तो उसपे शायद 2-3 लाख डॉलर कहते हैं खर्च होता है। अब लिखिए, अब दूसरी तरफ अब लिखिए, इस मासूम से दीन, इस किताब को फैलाने वाले आज कितने हैं? आप कितनों को जानती हैं? आप एक दिन घर बैठ के लिख के देख लें, ऐसे ऐसे एंटरटेनमेंट के नाम पे फोहश के काम करने वाले कितने लोगों को आप जानती हैं? नामों से या उनके किरदारों से या उनके मुल्कों से, उर्दू इंग्लिश उर्दू फुला फुला। और दूसरी तरफ आप जरा लिखिए तो सही कि आप कितने दीनदारों को जानती हैं, आपको खुद रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ आ जाएगा। अब वो जो मुट्ठी भर के हैं ना, उनसे भी शैतान खुश नहीं है। शैतान की ख्वाहिश क्या है कि लोगों के दिल में उनकी बुराई डाल दे। यकीन करें, अगर अल्लाह के दीन का खौफ ना होना, मैं आपको दिल की बात आज बता रही हूं, अल्लाह के दीन के फैलाने का खौफ और अल्लाह को जवाब दे करना, इंसान इस रास्ते को एक साइड पर करके अकेली अपनी जिंदगी बसर कर ले। इतना ये रास्ता कंटू का रास्ता है, اتنا شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے کہ اگر واقعی انسان پیپل پلیزر ہو اور لوگوں کے تو کہ جاؤ بھاڑ میں میری بلا سے، تم جس کھائی میں گرتے ہو کھاؤ، گرو، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے لیے کوئی خیر کی بات سوچے. شیطان اس طرح دلوں میں خیال ڈالتا ہے، اور اچھے اچھے لوگوں میں. ہم نے تو اچھے لوگ ابھی اتنے دیکھے بھی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان تمہارے دلوں میں عائشہ کے بارے میں غلط ڈال کیسے سکتا تھا؟ کیا اس بچی سے یہ توقع ہو سکتی تھی؟ اصل میں شیطان کا ایشو عائشہ نہیں تھی، شیطان کا ایشو فحش اور منکر تھا. نبی کا گھرانہ بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو، مدینہ میں گھر گھر باتیں ہو، دیکھو جی میاں صاحب وہ تبلیغ میں جا رہے ہیں اور بیگم کے کیا معاملے، یہ بات سنا ہے. اور ایک اس بات کو وعدہ ہے کہ 10 لوگوں کو دین سے اور تبلیغ سے دور کر دیں، یہ دیکھیں ہم نے بڑے تبلیغ کی ہیں، پتہ ہے ان کے میاں صاحب. یہ شیخ صاحب بیٹا کدھر ہوتا ہے جی آپ کا؟ وہ جی بیٹی کے کیا کرتوت ہے جی، آپ مسجد تو بنا چکے ہیں، آپ کے بیٹے کدھر ہیں؟ یہ جو دل کاٹنے والی باتیں ہیں نا، شیطان لوگوں کے دل میں ان لوگوں کے لیے ڈالتا ہے جو بےچارے نیکیاں کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات بھی آج سمجھ لیں، نمازیں پڑھنا اور بات ہے، مسجدیں بنانا بھی اور بات ہے، مسجدوں کی دیکھ بھال بھی اور بات ہے، اور دل کے ساتھ تقویٰ کا ہونا بھی اور بات ہے. بہت سارے لوگ ظاہر نیکیوں کے کام کرنے والے بھی شیطان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ نفس کا غلبہ. اکیلے میں تو گناہ کا موقع دے وہ نہیں چھوڑتے. حدیث میں آتا ہے، ایک خلاصہ میں تو یاد نہیں حدیث، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ ایک شخص جب اس کو پکڑا جائے گا تو پوچھا جائے گا، یہ تو بڑا نیک تھا، یہ تو بڑا مشہور تھا لوگوں میں اچھے کاموں میں، کہاں نیک تھا، لیکن اکیلے میں جب اس کو کسی برے کام کا موقع ملتا تھا تو اس سے چوکتا نہیں تھا. نفس شیطان، اور یہ خطوات شیطان ہے. اور آپ کو پیچھے یاد ہے سنایا بتایا تھا کہ خطوات، خطوات ان کی جمع ہے. خطوہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں ہاتھ، یہ دو پاؤں سمجھیں، آپ ایک پاؤں رکھتے ہیں نا، پھر اس کے بعد آگے رکھتے ہیں، پھر آگے، ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کے جو بیچ کی جگہ ہے نا اس کو خطوہ کہتے ہیں. قدم پر قدم، نقشے قدم. یعنی شیطان کا اٹ موسٹ گول کیا ہے؟ کہ دنیا میں فحش پھیلے. پہلا جرم جو یہ شیطان نے دنیا میں آنے کے بعد آدم اور حوا سے کرایا تھا وہ کیا تھا؟ لباس اتر والی، اللہ کی نافرمانی کا ٹکڑا لکما منہ میں گیا اور لباس اتر گئے. تو آج مجھے اور آپ کو اس کی فکر ہے. اپنا ایک ایک کپڑا دوبارہ دیکھیے، کہیں بھی پہنتے ہیں جاتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ایک مومنہ کی کیفیت نہیں دل میں آتی، آپ اس کو قربان کر دیں. اکیلے میں پہن لیں، اپنے کمرے میں پہن لیں، اپنا شوق پورا کر لیں، اپنے گھر والے کا شوق پورا کر دیں، لیکن آپ ایسی چیزوں کو اس سوچ کے ساتھ باہر نہ پہنیں کہ میں بری چیزوں کی اشتہار نہیں بن سکتی. لکھ کے بتائیں ان کو کہ ان کی دکانوں سے میں آئی تھی خریدنے، اس لیے نہیں خرید رہی کہ یہ چیز ہے. اب آپ کہتے ہیں یہ تو نان مسلم ہے. چلے مسلم بھی بہت سارے ہیں جن کے ساتھ آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. ہر وہ چیز کیوں آپ کی نظریں گندی چیز دیکھیں، کیوں سنیں، کیوں بولیں، کیوں پہنیں، اس کو ایک طرف کر کے دیکھیں. جو ہی آپ ادھر سے سیکیورٹی چیکس لیں گے نا، آپ کا دل سیکیور ہوگا. جیسے انہوں نے بھی کہا نا کہ میوزک چھوڑا تو میرے دل کی حالت بدل گئی، اور یہ ان کی گواہی نہیں، یہ فیکٹ ہے. جب تک یہ گندے جذبے آنکھیں دیکھنا سننا نہیں چھوڑتی، انسان کو ایمان کی دولت نہیں ملتی. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک عورت کو دیکھا اور اللہ کے لیے نظریں جھکا لی تو اللہ اس کی عبادت میں اس کو لذت دے گا. کیوں کچھ لوگوں کو عبادت میں لذت ملتی ہے اور کچھ کی جان جاتی ہے؟ क्यों कुछ का दिल मस्जिद में जाने से अटका रहता है और कुछ का वहां जाने से ही पीछे रहता है। ये फर्क होता है। और एक से दूसरी चीज, कम से कम अपने बच्चे, ये छोटे बच्चे मासूम, आप इनको कार्टूनों के नाम पे नंगी चीजें दिखा देते हैं, इनकी नजर खराब हो जाएगी। इनके कपड़े, छोटी बच्चियां स्लीवलेस टांगों से कपड़े हटे हुए पहनती हैं, और अब तो बड़ी बड़ी औरतें वो कपड़े पहनती हैं जो कल दो दो साल की बच्चियां लेगिंग्स पहनती थी। आज वो बड़ी बूढ़ी औरतों ने इतने टाइट कपड़े पहने होते हैं कि शर्म आ जाती है देखकर, कि इस उम्र में तो बंदे को खुद नुमाई का इतना जज्बा भी नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात है, कोई बोलता ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं। भाई ये खाली कमीजें क्यों बिक रही है? इसलिए जी कि और लोग टाइट्स पहनते हैं, शलवारों का तो रिवाज ही नहीं रहा। आप अपने मुल्क की ये बात समझेंगे? अब हमारे मुल्क में 60% कपड़े जो बुटीक्स पे बिक रहे हैं उनके से शलवारें नहीं बिकती। कहते शलवार का रिवाज खत्म हो गया, जिसका दिल चाहता है वो एक पतला सा पजामा पहन ले। बिल्कुल खत्म कर दिया, पहले दुपट्टा खत्म, बाजू खत्म, खुले गले, क्या हया को आप टांग मार रहे हैं। और पूरे बुटीक्स में आप देखें तो ऐसे तस्वीरें लगाई होती हैं जैसे इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई औरतें ही नहीं है। नजर नहीं उठती, कोई आवाज़ गाने सुनने नहीं जाते, कुछ नहीं। अगर आप कोई किसी का कपड़ा ही एक लेने जाते हैं, आप ले नहीं सकते। और जो अंदर का माहौल होता है उसको देखकर ऐसे ही लगता है कि जैसे पहन के ऐसे ही लगोगे तुम, जो ये लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं और वो घूम फिर के आपको बचा रहे हैं। अगर आपके अंदर पक्का ईमान ना हो, आप तो यूं फिसल जाएंगे। आपने तो ये चीजें शायद कभी देखी भी नहीं होंगी। तो लिहाजा जरूरत है अपने ईमान का तकाजा ये रखें कि मैंने फुहश को खत्म करना है। आप अपनी गली, अपने घर, अपने मोहल्ले में नजर डालें, मत कहें कि ये नॉन मुस्लिम है। और यकीन करें, मैं जो मैंने देखा है नॉन मुस्लिम्स को सरेआम मैंने इस तरह नहीं देखा, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं, जहां हम लोग रहते हैं वहां नॉन मुस्लिम इतने, नॉन मुस्लिम से मुराद गोरे हैं। हम एशियन लोग ही अगर अपने आप को ठीक कर लेना तो मेरा ख्याल है कि आज हमारे लिए ये भी काफी होगा। तो हर एक को अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे कि जो कर सकता है वो करे, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। जी आप फरत, कितने साल की बच्ची? ये बच्ची 12 साल की। यानी 12 साल की बच्ची जो लड़कों के साथ स्विमिंग इकट्ठी करें, इट्स ओके, और कोई बोलता भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम ये कहेंगे हम अपने बच्चों को इजाजत नहीं देते, क्या हमारा सिर्फ इतना ही फर्ज बनता है? देखिए ये शैतान के ही शैतान के बारे है। आप देखें कि उनको क्या, वो स्कूलों में स्विमिंग सिखाने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन इस तरह से, ये आपने भी बात सुनी तो मुझे भी एक आधी बात किसी की याद आ गई, लेकिन पहले आप बात करें। स्टैंड तो ले, देखिए हम तो स्टैंड ही नहीं लेते। बिलीव में हम लोग ये जैसे अब निकाब जो लोग करते हैं, जब हम एक चेक सिक्योरिटी से गुजरते हैं, जैसे किसी भी मुल्क में एंट्री हो तो पासपोर्ट कंट्रोल पे, उनका हक है कि वो हमारी तस्वीर देखे। इतना नहीं लोग कहते हैं कि भाई कोई औरत है, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का एक्सपीरियंस किया है, जितने वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तक हम होते हैं कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया, खुद देखते ही अकल से समझ के हमें लेडीज के पास भेजेंगे और 1 मिनट उनको कहेंगे अंदर, इवन जहाज से पहले जहां भी कभी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बाज दफा अपने ही मुसलमानों के काउंटर पे अटक जाते हैं। मैं कहती हूँ बद अखलाकी से पता चल जाता है कि हम अपनी रेंज में आ गए, नहीं है जी कोई औरत है। दिखाना है तो ठीक है बैठे ऐसे। एक जगह ऐसा हुआ कि उसने ऐसे मर था कोई ना, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि औरत है, कोई नहीं है जी, तो इन्होंने को बुला लो। तो यूं उसने पासपोर्ट फेंके, कहता जाए उधर बैठ के इंतजार करें, सुबह तक आ जाएगी। यानी ये अपने मुल्कों की हाल है, मुसलमान मुल्क था वो जो भी था, पाकिस्तान नहीं था वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि इतना कुछ जो इन एयरपोर्ट्स पे हो सकता है, क्या एक काउंटर सिर्फ औरतों के लिए नहीं आ सकता, और एक स्क्रीन नहीं लग सकती? और कई दफा ऐसा होता है कि औरतें होती हैं तो वो वहीं खड़ती हैं, दिखाओ। जूं अटक गई मेरे साथ, मैंने कहा सामने मर्द खड़ा, मैं निकाब कैसे उठाऊं? तो फिर उस फेंक के कहती उधर हो जाओ। तो मैंने कहा कि आपको इतनी भी समझ नहीं कि एक औरत निकाब करे, और आप औरत हैं तो कम अज कम आप इधर शेल्टर लगा दे। बद इखलाकी से जो तकलीफ होती है, और बंदा सफर का थका हुआ। और सबसे ज्यादा मुझे रोना ही आता है कि अल्लाह के हुक्म से सारी दुनिया में घूम के आते हैं, कभी कुछ नहीं होता। जब अपने बॉर्डर्स पे इन मुसलमानों के पहुंचते हैं तो ये रोने वाली कैफियत है। हर बंदा बेजार, और आपस में जो उनकी आंखों से इशारे और जो उनके मेकअप, अल्लाह की पनाह। जो दो प्रोफेशन से मुझे सफर के दौरान नफरत हुई है ना, उसमें एक एयर होस्टिंग है, जिसमें इतना क्लोज इंटरेक्शन देखती हूँ। बार दफा जहां हजारे बंदा जाता है, उठता है, वॉशरूम में जाता है, कि लड़की लड़के का फर्क तक मिटा होता है। मैं कहती हूँ कि मेरे तो अपनी नस्लों को भी कह जाऊं कि कभी हमारी कोई ऐसी जॉब ना करे कि जहां मर्दों से इतना इंटरेक्शन है। और दूसरा, ये जो काउंटर्स पे बैठी हो लड़कियां लड़के, रात के मोमन वक्त होते हैं फ्लाइट्स के, और फुल मेकअप, चाहे अबाए भी पहने हुए, अपने स्कार्फ भी लिए हुए, लेकिन आपस में लड़के लड़के क्योंकि जो इशारे, रोना मुझे इस बात पे कि लड़के के साथ उसने इतनी अदाज से बात की थी, तो मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बोल रही है। यकीन करें ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो फाहिशी फहाशी जो होती है, फाहिशा, ये इंसान की जुबान से भी फैलती है। हंस तो लो, स्माइल तो दे दो, कुछ नहीं कर सकते, एक वार्म वेलकम तो दे दो। लेकिन ऐसे लगता है हम मुसलमानों के ऊपर वाकई अल्लाह ने इस वक्त कोई ऐसी बात डाली हुई है कि हमारी हर बात ही उल्टी दिखती है। अभी ये कोई बता रहा था कि एक कोई दिन होता है जिसमें स्कूलों में एक बदतमीजाना और चीज चल गई है, कि अचानक सरप्राइजली बच्चियां जब स्कूल में किसी जगह से गुजरती हैं, तो वो किसी को उन्होंने पहले इस तरह से पकड़ा होता है कि उसका कपड़ा उसमें अटक जाता है, तो उसको सब देखते हैं। उसका नाम था, मेरे भूल गया, और लाहौल वाला को इतनी गंदी बात है। तो उन्होंने बताया कि एक लड़की के साथ अचानक ऐसे किया, और उसके जब माँ बाप को पता चला तो वो एक किस्म का जहनी तवाजन खो बैठे कि हमारी बच्ची को इस तरह निकट देखे, मजाक के तौर पे। जैसे अप्रैल फूल है तो गालिबन शायद जनवरी या फरवरी में जब कोई नई क्लास शुरू होती है तो अब ये रस्म पड़ गई है कि स्पेशली बच्चियों सबके सामने एक्सपोज करते हैं उनको, और वो सब देख के हंसते हैं, तो वो फिर कपड़े नीचे कर लेती है। ये अब एक रिवाज पड़ गया है स्कूलों में। शैतान क्या चाहता है, नंगे हो जाओ, छोड़ो सब कुछ। तो फिर ये चार लोग जो अपने आप को छुपा लेते हैं, वो उनको और बुरे लगेंगे, वो तो एक्सट्रीमिस्ट लगेंगे। फिर वो कहता नहीं बस इतना ही ठीक है। एक सिस्टर थी, बड़ी उम्र की थी, ऐसी कोई बात हुई, मैं बड़े अच्छे मूड में मैंने उनसे कहा कि मजे तो सारे औरतों के है ना, मैंने खुश होकर उनसे कहा। तो मैंने कहा कि देखिए हम औरतें कितने अच्छे कपड़े पहनती हैं सब है। तो एक साथ बोली, कहती हाँ मर्द बेचारे तो बस पतलून शर्ट ही पहन के आ जाते। मैं कहा जो भी पहने ऐसे ही लगते हैं। तो एक बोली, कहती नहीं मर्दों पे भी तो एक बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा क्या? कहती उनको भी तो रोज शेव करनी पड़ती है ना। तो मैंने उन्हें कहा कि वो तो उन्होंने खुद अपने ऊपर डाली है शेव मुश्किल। कहती ऐसे उसने ना, कहती अच्छा थोड़ी लगता है मर्द दाढ़ी बढ़ावा। नहीं नहीं रहने दे रहने दे। यानी उसने शेव करने को मर्दों की मजबूरी समझी, उनकी साइड ली मेरे सामने कि मर्द बेचारों को रोज शेव करनी पड़ती है, हमें नहीं करनी पड़ती, तो ना करें। तो उस औरत बूढ़ी थी, यानी मेरा हाल 60-70s में होंगी, अच्छी औरत थी, नाइस बात हुई उनसे बात भी। लेकिन जो उनके एक्सप्रेशन दाढ़ी के बारे में मैंने देखे, तो मैंने कहा अगर इनके मियाँ ने देख लिए वो तो कभी दाढ़ी नहीं रखेंगे, कि मेरी बीवी तो पता नहीं मुझे देख के उपकाइयां लेगी अगर मेरी दाढ़ी बड़ी होगी। गैर महसूस तरीके से हम दुनिया में शैतान के लंबरदार बने होते हैं। तो अपने बच्चों को अगर स्कूलों में भेजते हैं, वल्लाह ही नजर रखा करें, शैतान सबसे ज्यादा इस वक्त दो रास्तों से जा रहा है हमारी नस्लों के पास, एक मीडिया और एक स्कूल सिस्टम। और स्कूलों में जो उनके मैसेजेस हैं, और जो बुक्स हैं, और जो उनके अंदर जो उनको पढ़ाते हैं, वो आप मैं तो पढ़ते भी नहीं। हम इस पे बड़े खुश हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो दुआ कीजिए कि हमारी नस्लों के लिए अल्लाह हमसे कुछ ले लें, तड़पे रोए पढ़, अल्लाह के आगे आहें भरे, अल्लाह तो मेरा सब कुछ भी ले लेना तो मेरे से नस्लों के लिए कोई काम ले ले, वरना याद रखिए कि हम नहीं बचेंगे। आप सोचिए कि आज ये हालात हैं, 2014 हो गया, आज से 10 साल बाद क्या होगा? हम नहीं होंगे, मान लेते हैं, अल्लाह को पता है किसने जीना है किसने नहीं, हमारे बच्चे तो होंगे ना, बच्चे पोते नवासे, वो किस माहौल में आएंगे? आज तो कोई थोड़ा तड़पने वाली नानियां दादियां माँ बाप फिर भी हैं, आप सोचिए जितनी तेजी से बच्चों में चेंज आ रहा है हमारे नस्लों में, और जो दूसरी शादियां हो रही हैं, मल्टी कल्चरल शादियां, गैर मुस्लिम्स के साथ शादियां, इसका आखिर अगली नस्लों में उम्मत मुस्लिमों पे फर्क असर क्या पड़ने वाला है। इसीलिए देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इन आयतों में बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, अगर अल्लाह का फजल और रहमत ना तुम्हारे शामिल होता तो कभी तुम में से कोई बचता ना। और ये सच है, आज भी वही बच्चे हैं जिनको अल्लाह ने बचाया है। आप देखिए इसी गंदगी में कई प्यारे बच्चे निकल आते हैं, कई बाहया बच्चियां निकल आती हैं, इसी गंद में होते हैं, लेकिन उनके अंदर अल्लाह दीन की नमाज की मोहब्बत डालता है, क्योंकि वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है पाक करता है, वल्लाहु समीउ अलीम, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और हर चीज को जानने वाला है। तो शुरू से ये चीज रखें, दुआ करें कि अल्लाह हमारे बच्चों को पाक रख, हमारे मर्दों को, हमारी औरतों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को पाक रख। एक और रिपोर्ट मैं कल सुन रही थी सबक के साथ कि किस तरीके से अमेरिका में रहने वाले मर्द और औरतें कन्फेस करते हैं, जो कल आपको मैंने फिगर्स दिए थे ना वो थोड़े पुराने थे, लेकिन अब मैंने थोड़ी सी लेटेस्ट चीजें सुनी जिसका खुलासा मैं नोट नहीं किए कि छोड़ो मैं इस पे क्या अपना टाइम वेस्ट करूं, यानी उसमें जो बात मेरे दिमाग में रह गई है, 50% औरतें कहती हैं कि शादी के बाद भी हमने अपने शौहर की खयानत की है, और मर्दों में, अमेरिका के ये फिगर्स थे, मर्दों में शायद 60 से मोर% मर्द हस्बैंड कहते हैं यस वी कन्फेस कि हमने शादी के बाद भी अपनी बीवियों के साथ खयानत की है। और इसी तरह की लंबी चौड़ी कहानी है, वो खुद बोल बोल के बता रहे हैं कि हम अल्लाह के नहीं बने तो हम बंदों के भी नहीं है। तो ये हालात है, इसमें बस कोई पाक रह गया तो वो वही है जिसको अल्लाह ने पाक करना है। मुझे और आपको अल्लाह ने बहस में बुलाकर हमारे ऊपर एहसान किया है कि अपने सोए हुए जज्बे जगाओ, उठो, सुस्तियां छोड़ो, नींद छोड़ो, अपने वक्त को सही इस्तेमाल करो, ये 4 दिन की जिंदगी है, बर्फ की तरह घुल जाएगी, कुछ करके इस दुनिया से जाओ, मरना तो है ही है, ऐसी मौत बंदा मरे कि जिसके बाद फखर हो, और ये मौत कि आपने भी कामना पूरे की है, और उस वक्त की रिग्रेट और उस वक्त की हसरत, अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। इसके बाद आयत 22 का खुलासा समझ लीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाते से जब उनको ये पता चला कि मिस्तों ने भी हजरत आयशा पर तोहमत में कुछ बात की, तो अबू बकर को बाप होने के नाते, चले सिद्दीक थे लेकिन बाप तो थे, दुख हुआ। इन्होंने कह दिया कि आज के बाद मिस्तों को मैं एक पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि इसने मेरी बेटी पे बात की है। तो अल्लाह ने फौरन अबू बकर को मुकाम सिद्दीकियत याद दिलाया कि वला या तली उलुल फतली मिनकुम वसाती, और कसम ना खा लें तुम में से फजीलत और कुशादगी वाले लोग, यानी जिनको अल्लाह ने फजल भी दिया है, वुस्सत भी दी है, मुराद है, मालो दौलत है, कुशाइश है, अच्छी नेमतें दी हैं, वो इस बात से अब कसम न खा ले क्या, अय्यूतु उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजरीन फी सबीलिल्लाह, इस पर कि वो अपने मालों में से दें कराबतदारों को, मसाकीन को और मुहाजरीन को अल्लाह की राह में। ये तीनों सिफात मिस्तों में थी, हजरत अबू बकर के रिश्तेदार भी थे, मिस्कीन महाजिर भी थे, गरीब थे, तभी तो अबू बकर उनकी टेक केयर करते थे, और मक्का से हिजरत करके मदीना आने वालों में से भी थे। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा ना करो, यानी अबू बकर ने तो आम बात सोची लेकिन अल्लाह ताला ने उनको आला दर्जे की नेकी बता के कहा, और साथ ही फरमाया वल्याफ वल्यस्वहो, चाहिए कि माफ कर दे और दरगुजर से काम ले। क्यों अल्लाह तो हिब्बू नफिर अल्लाहुल्लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको भी माफ कर दे, कौन जाना चाहे, वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला तो बख्शने वाला मेहरबान है। इन आयतों को सुन के अबू बकर सिद्दीक ने कहा था बला वल्लाहि इन्ना नुहिब्बु अन तग़फिर लना रब्बना, क्यों नहीं है हमारे परवरदिगार, हम जरूर ये पसंद करते हैं कि तू हमें माफ कर दे। और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ ये कि कसम का कफारा दिया बल्कि मिस्तों को पहले से भी ज्यादा देना शुरू कर दिया। अपने दिल पर लेके सोचिए, किसी ने आपको इतना बड़ा दुख दिया, आपकी बेटी पर, और छोटी बात नहीं, जिना की तोहमत लगा दी, और बाद में आप उसको और देने लग दे सकते जिसको अल्लाह के पास जाना है। आज बस तो हम अपने रिश्तों को सिर्फ अपने रिश्तेदारियों के नाम पे निभाना चाहते हैं, खुश वो फिर भी नहीं होंगे। जिसको अल्लाह से प्यार है और जो अल्लाह को सामने रखेगा वो अपने रिश्तेदारों से कभी नहीं कटेगा। हम छोटे छोटे ग्रजिस दिल में रखकर महीनों के एतबार से अपने रिश्तेदारों को नहीं मिलते, और नुकसान क्या होता है, फिर दिलों में गांठों पे गांठें पड़ी जाती हैं। आप ही शायद को सुनते वक्त सोचे, कोई ऐसा रिश्तेदार जिसने आपको दुख दिया हो, आपकी ये शान फरामोशी की हो, आप यहां बैठे बैठे कहें कि जाओ मैंने तुमको माफ किया। जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो अल्लाह सुबहाना ताला भी हमें माफ कर देता है। आप देखिए, ये day 1 से सिखाया जाने वाला सबक है, जो हम अगर अपने बच्चों को सिखा दें तो फिर आप देख सकते हैं कि उनको भी तौहीद समझ आएगी। हम अक्सर औकात अपनी जंगें लड़ते रहते हैं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये नहीं दिया। अब ये मिस्तो और अबू बकर के मामले को साइड पे कर दें, आप जरा अपने मामलों पे गौर करें। अमूमन मेरा लोगों के साथ मामला कैसा होता है? क्या मैं लोगों को माफ कर देती हूँ? क्या मेरा मामला लोगों के साथ अबू बकर वाला मामला है? और खुद से पूछे ना, का सोचें कि अगर मेरा कोई फलां रिश्तेदार मेरी बेटी पर कोई बात करे तो क्या मैं उसके साथ बाद में एहसान का मामला करूंगी या उसको नहीं करूंगी। और ये सिर्फ तब होता है जब अपनी जात छोटी और अल्लाह की बात बड़ी होती है। इसके ऊपर रहें और आप देखेंगे कि अल्लाह की जात अपने आप को मनवाती है, वो भी तो हमारे कितने गुनाह माफ करता है। अगर हम अपने लोगों के गुनाह नहीं माफ करेंगे तो आप ये बताइए कि कल हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अपने ऊपर लेके सोचें, अगर अल्लाह मुझे मेरे हर गुनाह पे पकड़ ले तो क्या मैं किसी को शक्ल दिखाने के काबिल हूं? क्या मैं ये चाहती हूं कि मेरा रब मुझे माफ कर दे? बिल्कुल चाहती हूँ, तो फिर मैं दूसरों को माफ क्यों नहीं करती? हम तो 20 साल पुरानी चीज नहीं किसी की छोड़ते, आज की बातों को तो पीछे कर दे। अमूमन आप देखिए कि जो हमारे दिलों में दूसरों के लिए गिरे पड़ी होती है वो अमूमन नई नहीं होती, पुरानी होती है, कई कई साल पुरानी होती है। पहले खुद नफरतों में जीते हैं, फिर बच्चों को नफरतें सिखाते हैं, फिर रिश्तेदारों की एक लिस्ट दे के जाते हैं, हमारे पास तुमने इनको नहीं मिलना, इन्होंने मुझे बड़ा दुखाया था। एक सवाल पैदा होता है कि अगर जिंदगी में किसी रिश्तेदार ने आपको नुकसान दिया हो, तकलीफ दी हो, तो क्या आप अपने बच्चों को उनसे रोक सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं? तो आप देखिए कि बच्चों को बताना जो होता है ना, वो किस रंग का होता है, किस तरह से आप कर सकते हैं, बगैर नाम लिए, बगैर किसी की तरफ इशारा किए हुए, अगर आप अपने बच्चों को ये बताते हैं कि भाई देखो फलां है उससे केयरफुल रहना, या किसी वक्त पे उस तक दर पर्दा ढकी छुपी, इट्स ओके okay। लेकिन ये जो हम खास अपने ससुराली रिश्तेदारों की बातें अपने बच्चों के दिलों में डाल जाते हैं ना, इसका नुकसान पता क्या होता है, आपके बच्चे भी उन रिश्तों से फिर नफरत करने लगते हैं। और अमूमन देखा गया कि इसमें ददियाल के रिश्ते होते हैं। बच्चों को कभी नफरत में ना पाले। एक दिन मैं आसिफा के घर पे थी तो ये अमीन जो था ना, ये रोता हुआ आया बाहर से, बड़ा जैसे बच्चे आते हैं रोते हुए। उसने ये ले लिया, पता नहीं इकरा ने कुछ उसका ले लिया था, मुझे याद है वो छेड़ रही थी, वो उसकी चीज ले रही थी, तो बड़ा रोता हुआ है उस, शी टुक माइन दिस। तो मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा कि देखो अमीन, जब कोई आपकी कोई चीज लेता है ना तो उसको कहते हैं ले लो, अल्लाह और दे देगा। अब जरा आप उसका एक्शन देखिए, ये मुझे इसने कल भेजी तस्वीर, मेरे हाल वो बेटी आपकी ने भेजी है, ये इसकी, अब इसकी आवाज पता नहीं आपको आती है कि नहीं। अब ये सबक मैंने इसको कोई महीना डेढ़ पहले पढ़ाया था, मेरा ख्याल है 1 से पहले की बात है, तो इसको वो याद है। अब वो बच्ची उसको पूछ रही है, आपको शायद समझ ना आए, तो बच्ची उसको पूछ रही है कि जब कोई तुम्हारी चीज ले तो उसको आगे से क्या कहते हैं। बच्ची उसको पूछ रही है कि देखिए इसका एक्शन कितना प्यारा है, मैंने इसको कितनी दफा उस दिन से देखा है, और देंगे ना ले जाओ। तब आप देखिए कि ये उम्र ऐसी होती है ना, मैंने भी नहीं ऐसे कहा होगा जैसे उसने कहा जी। यानी मैं ये सोचती हूँ कि अगर इन बच्चों की हम हिफाजत, कितना बड़ा खजाना है ये। जब इसने भेजी तो सर भी थे, तो मैंने उनको दिखाई तो वो भी हंस पड़े, कहते इसको हाफिज बनाओ। मैंने कहा हाफिज नहीं, इसको हमने आलिम बनाना है। हाफिज तो बहुत है हमारे पास माशाल्लाह, लेकिन हकीकत यह है कि इस चीज को बिल्कुल अपने जहन में रखे। अब इस बच्चे के जहन में है कि कोई चीज ले तो ले जाओ, फिर अल्लाह और देगा, तो अब क्या ला तो है बो ना। क्या ये छोटा सा एक मैसेज हमने बच्चे को देकर क्या उसको हमने नहीं सिखा दी ये बात कि अल्लाह देने वाला है। इस तरह छोटे छोटे मैसेजेस, और मैं कहती हूँ कि अगर माएं सिर्फ तरबियत के मरहले पे गौर करें ना, तो उनको बाकी चीजों की फुर्सत ही ना रहे। तो बहरहाल इसके बाद अगली आयतों में अल्लाह सुबहान तआला इसी से फिर मिलती हुई बात आगे हमें सबक दिया जाता है। अब असल में हजरत आयशा पे जो तोहमत थी उसका किस्सा है, उसका यानी आप कह लीजिए कि ततिमा है, आयत नंबर 23। इन अल्लज़ीन यरमून अल मुहसनात अल गाफिलात अल मुमिनात, यकीनन जो लोग, यकीनन वो लोग जो तुहमत लगाते हैं पाक दामन बेखबर मोमिनात, लुइनू फि दुनिया वल आखिरा, इन पर फटकार रहे दुनिया में भी और आखिरत में भी, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। आप इस आयत को सामने रखें और इमेजिनेशन में अब्दुल्ला बिन उबई के वो जुमले लाएं, जिस सोच के साथ उसने वो जुमले बोले थे वो क्या थी, कि मैं आयशा को बदनाम करूंगा, अल्लाह के नबी के दीन से लोगों को दूर करूंगा। अल्लाह का फैसला क्या है, बुराई हमेशा करने वाले पे पलटती है। जो किसी के लिए कुआं खोदता है ना, उसी में खुद गिर जाता है। कभी भी आप अपनी जिंदगी में ये काम ना करें। गाफिलात मोमिनात, अब ये सारी सिफात किसकी है, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की, भोली भाली मासूम है और उस पे मौत तोहमत लगा दी। और गाफिलात से मुराद जो इग्नोरेंट नहीं है, सीधी सादी मासूमियत के मानों में पाक दिल है, बड़े बड़े मामलों से बेखबर है, उनको तो पता भी नहीं कि बदचलनी होती क्या है, ऐसी बातें तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं। और आयशा इस उम्र में कोई बॉयफ्रेंडशिप्स की बातें नहीं करती थी, वो बड़ी पाक दामन औरत थी। ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अईदीहिम व अरजुलुहुम, जिस दिन इनके खिलाफ गवाही देंगी इनकी जुबानें, इनके हाथ और इनके पाँव, क्यों, बिमा कानू यामलून, इस बारे में जो अमल करते थे। वही बात इधर आप लफ्ज देखे, शहीदा के बाद क्या आ रहा है, अला, अगेंस्ट के मानों में, इनके खिलाफ गवाही देंगे इनके हाथ इनकी जुबान और पांव। आप यहां एक छोटी सी एक्टिविटी बनाएंगे, अपने हाथ बना लें, जुबान बना लें और पांव, और लिखिए, अगर हाथों जुबान और पांव से कोई गलत काम किए हैं, कियामत के दिन ये अजाब बोल बोल कर दूसरों को बताएंगे कि ये यहां चले थे। क्योंकि यौम इजी युवफी हुमुल्लाहु दीनहुमुल हक, जिस दिन अल्लाह इनको पूरा पूरा देगा इनका वाकई बदला, पक्का बदला, सच्चा बदला। यहां दीन का लफ्ज उसी माने में जो यौम-ए-दीन में सूरह फातिहा में आता, बदले का दिन। वयालमून अन्नल्लाह हुवल हक्कुल मुबीन, और वो जान लेंगे कि अल्लाह ही हक है, खोल कर बयान करने वाला। सोचिए, तौबा कर ले, जिसकी बुराई की उसे माफी मांग ले, अकेले में, सामने में, तन्हाई में, दूसरों के सामने माफिया मांग लीजिए, ये सोचकर कि क्यामत के दिन मेरे अपने जिस्म की अजान है बोलना है। और अल्लाह ताला फिर आखिर में अब नबी सल्लम का इशारतन जिक्र करते हैं आयशा के मामले में, और अब्दुल्ला बिन उबई के साथ उसके फेल को मनसूख करते हुए कहते हैं, अल खबीसातु लिल खबीसीन, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए, वल खबीसून लिल खबीसात, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, इशारा अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ है। और जबकि वह तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, और पाकबाज औरतें पाकबाज मर्दों के लिए, वह तय्यिबून लित्तय्यिबात, और पाकबाज मर्द नापाकबाज औरतों के लिए, इशारा है। सोचो कि आयशा बीवी किसकी है, क्या अल्लाह ने अपने नबी के लिए नापाक औरत रखनी थी। उलाइका मुबर्राउन मिम्मा यकूलून, ये लोग बरी हैं इन बातों से जो ये लोग कहते हैं, लहुम मग़फिरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनके लिए मग़फिरत है और इसके करीम है। इस आयत की एक तफसीर तो वही है जो मैंने तर्जुमे में रखी कि कपल्स किरदार के मुताबिक होते हैं। अल्लाह का एक आम कानून है, जैसा हीरा होता है ना उसको वैसे ही जाके झड़ता है, घड़ता है, जैसी चीज होती है ना वो वैसी जगह पे पहुंचती है। ये फितरत का असूल है, आप अपने खानदानों में भी इसको देख सकती है। बाद जगह शादियां होती हैं, कपल होते हैं, तो देख के लगता है वाकई बिल्कुल सेट एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। बाद सब तबीयतों का फर्क भी होता है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत इम्तिजाज होता है। जैसे अगर पहाड़ है तो उसके साथ खाई भी होती है, समंदर है तो उसके साथ इसी तरह पुल भी है। اسی طرح گندے لوگوں کا مزاج گندوں والا ہوتا ہے. اب اس کے اندر آپ ایک ایکسپشن دیکھیں گے کہ نہیں ہمیشہ تو ایسا نہیں ہے, میں تو بڑی نیک تھی مجھے میاں سے ملے, یا فلاں بیٹا تمہارا بڑا اچھا تھا اس کو بیوی اچھی نہیں ملی, تو لینا بلوا کو میں کو مخصن ہوا ملا. جس طرح بعض دفعہ ہینڈی کیپ بچے پیدا ہو جاتے ہیں سب تو ٹھیک ہوتے ہیں, کس طرح بعض دفعہ لوگ بھوکے مرتے ہیں حالانکہ اللہ رزاق ہے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے جوڑے بدلتا ہے. کیوں بھلا بدلتا ہے آپ کو پتا؟ اللہ آپ سے وہ کام کرانا چاہتا ہے جو آپ کیا کرایہ لینا چاہتی ہیں. اللہ چاہتا ہے آپ اپنے شوہر کی ہدایت کا ذریعہ بنے. یہ کیسے بننا ہے؟ یہ آپ کا اللہ کا معاملہ. اگر کسی کو ایسے حالات ملے تو وہ خوش ہو کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو چنا تھا, یا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے حالات جو رکھے تھے حضرت نوح کی بیوی ان کی طرف نہیں. آپ کی کوششوں سے دوسرا فرد اگر اچھا ہو جاتا ہے بڑی اچھی بات ہے, نہیں ہوتا آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک معنی تو یہ ہے کہ الزام لگانے والوں کو سوچ لینا چاہیے. دوسرا اب اس کا معنی یہ جو لفظ ہے نا خبیثات اور اسی طرح تیشی بات, کہتے ہیں یہ عورتوں کے لیے نہیں بلکہ باتوں کے لیے. اب تفسیر کیا ہو جائے گی؟ الخبیثات للخبیثین, خبیث لوگ گندے لوگ گندی باتیں کرتے ہیں. عبداللہ بن ابی اگر گندا تھا تو اس کی سوچ گندی تھی, اس نے گندی باتیں کی. اور اسی طرح الخبیثون للخبیثات, اسی طرح جو لوگ ہوتے ہیں ناپاک لوگ ہیں وہ ناپاک باتیں کرتے ہیں, جبکہ طیبات یہاں اچھی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, دونوں باتیں ٹھیک ہے, فرق کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کبھی کسی کے بارے میں غلط لفظ نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی, اور کسی ایسی چیز کو آگے نہیں کرنا. فوراً ڈیلیٹ کر دیں اس میسج کو جس میں کسی بھی بندے کی برائی ہو, آپ اس کو جانتے ہیں نہیں جانتے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود اپنا آپ برا دکھاتے ہیں تو ان کی برائی کافی ہے, آپ نہ تصدیق کریں نہ تکذیب کریں بس اس کو کاٹ دیں. لیکن آپ کسی چیز کے اندر ذمہ دار نہ بنیں کسی کی برائی کو پھیلانے کے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء الله تعالى یہاں پہ رکتے ہیں. آپ اذان چلا دیں, میرا لے ایک یا دو منٹ میں عصر کا وقت ہو رہا. جی آن لائن سے آپ لوگ چھوڑنا چاہیں تو ہمیں چھوڑ سکتے ہیں.
جی جزاک اللہ خیر کثیر واسن استاذہ. الحمد للہ ہمارا لیسن بہت خوبصورت اور بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ ہم نے پہلے بھی تھوڑا بہت ڈسکس کیا. الحمد للہ اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارا معاشرہ بہت صاف ستھرا اور پاکیزہ بنے نا. اس کے لیے ہم سب نے انشاءاللہ محنت کرنی ہے اور سوچنا ہے کہ کیسے ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ ہم بھی یہیں فوراً سے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور باقی جو بھی کیا پھر ڈسکشن ہوگا تو وہ ہم انشاءاللہ کر کے سیشنز میں کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.